दिल में यही होता है बाकी लोग कितने मजे कर रहे हैं। हम मुसलमानों के लिए तो कितनी मुश्किल है कि हमें ये भी करना पड़ता है, रोजा भी रखना है, हमने 5 दफा नमाज भी पढ़नी है, हमने हलाल हराम की भी चीजें देखनी है। देखो इनके कितने मजे, आराम से कमाइयां कर रहे हैं, सूद भी खा रहे हैं और वो लॉटरी भी कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और देखो पार्टी टाइम कितना अच्छा करते हैं और कितने मजे से जिंदगी गुजार रहे हैं। इनके तो मजे ही मजे हैं ना। मुसीबत तो हमारी है, नहीं हमारी मुसीबत नहीं, हम अल्लाह तेरे हर फैसले पे राजी हैं, तेरा हर हुक्म पे हम राजी हैं। ये सारे अहकाम जो अल्लाह ताला ने दिए इन पे राजी होना, तब आप ये मुंह से कह सकते हैं रदी तो बिल्लाही रब्बन, वरना तो झूठ है। बस एक रटा रटा है कलमा रदी तो बिल्लाही रब्बन। अल्लाह ताला उस बंदे को उस दिन कयामत के दिन राजी कर देगा जो ये कलमा कहता है, यानी सिदके दिल से वाकई वो राजी होता है। ठीक है, आप सरसर ने फरमाया मैं उस बंदे को हाथ पकड़ के जन्नत में लेकर जाऊंगा जो ये कलमा कहता है, इतना जबरदस्त है। लेकिन क्या ये वाकई दिल से कह रहे हैं, सच्चाई है इसके अंदर कि मैं राजी हूं? वाकई आपका दिल राजी है, खुश है आप? तकदीर का जो फैसला होता है उस पर खुश है ना? यही मेरी तकदीर में तूने लिखा था, अल्लाह तू जिस पे राजी मैं भी राजी। कभी नाराज नहीं होना, अल्लाह तूने ये क्यों कर दिया, तू ऐसा मेरे साथ ही करना था तूने, ये क्यों हो गया, मेरे ऊपर ही बीमारी आनी थी, बाकी सब अच्छे भले फिर रहे, मैंने ऐसा क्या कर दिया, आए मेरे प्यारे को दुनिया से तूने लेके जाना था, ये सब क्या है, नाराजगियां, ये रजा नहीं है। आए मेरी शादी ये इस जगह पे क्यों हो गई, सारी जिंदगी से मैं पैसा रही, बस तकदीर का फैसला, राजी हो जाए उसके ऊपर, बस यही मेरी तकदीर में लिखा था। इन्ना कुन्ना मुरसिलीन, बेशक हम थे भेजने वाले। इसको इन अगर हम इससे देखें यो, तो कुरान भी जो हमने एक अमरन का अगर मतलब कुरान लेते हैं, तो कुरान के हम थे भेजने वाले, ये हमारी तरफ से और हमने ही भेजा, और दूसरे ये तकदीर के फैसले भी हमने ही नाजिल किए, ये अल्लाह की तरफ से ही है, और फिर रसूल को भी हमने ही भेजा, और ये रहमत मिर रब्बिक, ये रहमत है तेरे रब की तरफ से। वाकई रहमत समझते हैं इस कुरान को, अमरन से माना अगर कुरान लेते हैं, हम दोनों तफसीरों को साथ साथ लेकर चल रहे हैं, आप दोनों को इसमें फिट करके, क्योंकि अभी तो मुझे साथ साथ करना पड़ता है, वरना आप फीहा युफराको कुल्लु अमरिन हकीम, इसमें अमर से मुराद कुरान लेके फिर सारा कुरान के साथ मतलब आप समझे, फिर उसके बाद तकदीर लें तो सारी उसके साथ मतलब समझे। ठीक है कि हम फीहा युफराको कुल्लु अमरिन हकीम, और ये जो कुरान का फैसला है वो हिकमत पे मबनी है, इसमें जो भी फैसले किए जाते हैं, जो भी अहकामात दिए जाते हैं, और ये रहमत है तेरे रब की तरफ से। रहमत कौन नहीं पाना चाहता, हर कोई चाहता है मेरे घर में रहमतें हों, बरकतें हों, मेरी जिंदगी पे अल्लाह की रहमतें हों, तो ये रहमत तो अल्लाह ताला ने तुम्हें दे दी, तेरे रब की तरफ से रहमत है। कौन रहमत को लेना चाहता है, इस कुरान को ले ले, ये अल्लाह ताला अता करता है जिससे भलाई का इरादा करता है। तो अल्लाह ताला ने बंदों के ऊपर बड़ी रहमत की कि ये उतार दिया, बड़ी रहमत की, वरना सारे के सारे आग में ही जलने वाले हो जाते। और ये भी अल्लाह ताला की रहमत है, ये सारे फैसले उसने अपने पास ही रखे, किसी और को नहीं दे दिए थे कि तुम फैसले करो इनके लिए, ये उसने किए हैं। हमारे हाथों में फैसले होते तो हम सब मैसअप करके रख देते, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने हाथ में सब फैसले रखे। इन्नहू वस्समीउल अलीम, वो सुनने वाला भी है इल्म वाला भी है, वो तुम्हारी सारी बातों को सुनता है, हर आवाज को सुनता है, तुम क्या कह रहे हो वो बात उस तक पहुंच जाती है, और उसके इल्म में हर बात, दिल में भी जो सोचते हो वो उसके इल्म में है, और उसको पता है कि तुम्हारी भलाई किस में है, वो अल अलीम है, जिसके पास मुकम्मल इल्म है, अधूरा नहीं है, जिसकी बेस पे उसने ये फैसले किए हैं। رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وہ رب ہے آسمانوں کا، زمین کا، اور جو ان کے درمیان ہے اگر تم ہو یقین کرنے والے. وہ لوگ کہتے تھے کہ اب آسمان و زمین کا رب تو اللہ ہی ہے، لیکن اگر تمہیں واقعی اس بات کا یقین ہے کہ آسمان و واقعی تم یقین کرتے ہو، تو پھر تو لا الہ الا ہوا، تو پھر تو کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا. کیونکہ جو رب ہے، رب کا معنی کیا ہوتا ہے، یہ میں نے بہت دفعہ آپ کو بتایا، تو اب اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، خالق، مالک، مدبر. خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے. ان کی تدبیر، ان کی ساری پلاننگ، ان کی سسٹیننس، ان کی مینٹیننس، ان کی ضروریات کو کرنا، یہ سب مدبر میں آتا ہے. ساری تدبیر وہی کرنے والا ہے، تو سارے اختیارات اس کے چلتے ہیں، آسمان، زمین اور ان کے درمیان بھی. تو پھر کون سی جگہ رہ گئی بتائیں؟ آسمانوں میں جو کچھ ہے تو سارے یونیورس آ گیا نا، سارے آسمان، سارے آسمان کہا گیا. ایک آسمان نہیں، یہ صرف آسمان دنیا نہیں کہا گیا، یعنی جتنی گیلیکسیز ہیں، جتنی کائنات ہے، وہ سب آسمان ہی تو ہیں، وہ ابھی آسمان دنیا ہیں صرف. دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں آسمان تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، پایا ہی نہیں. یہ آسمان دنیا پہ ہیں. اور آپ اگر اس چیز کو سٹڈی کبھی کریں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ اس کائنات میں کتنا کچھ ہے. پھر آپ سوچیں گے، اللہ اگر یہ آسمان دنیا کا حال ہے تو اس سے آگے کتنا کچھ ہوگا جس کا ہمیں علم نہیں. میرا علم بہت چھوٹا ہے، اور اسی کی بنیاد پہ میں فیصلے کرتی ہوں، اور میں جو چیز سمجھتی ہوں یہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ نہیں ٹھیک ہو. جس چیز کو میں سمجھتی ہوں یہ بری ہے، ہو سکتا ہے وہ اچھی ہو. جس کو میں سمجھتی ہوں اچھی ہو سکتا ہے اس میں برائی ہو، مجھے نہیں پتا، کیونکہ میرا علم محدود ہے. اور اللہ تعالیٰ رب ہے آسمانوں کا، زمین کا، اور جو ان کے درمیان ہے. زمین پہ بھی جو کچھ ہے اس کا بھی رب وہی ہے، درمیان میں اس کے جو کچھ ہے. کیا کچھ ہے درمیان میں ہمیں کیا پتا؟ فرشتے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پرندے اڑ رہے ہیں، جنات آتے جاتے ہیں، اور اللہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں جن کو ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے. کوئی ایلینز ہو، کوئی کچھ ہو، ہمیں کیا پتا؟ ہمیں تو جنوں کا بھی بتا دیا تو ہمیں پتا ہے، ورنہ شاید یہ بھی نہ پتا ہوتا. اگر تم یقین رکھنے والے ہو، اس لیے کہ کافر یہاں تک تو کہتے تھے، مگر آگے تمہارے یقین کو کیا ہو جاتا ہے کہ پھر کون ہے جو عبادت کے لائق ہے، الہ کون ہے؟ پھر وہی ہے جو لا الہ ہے نا، یہ کلمے کا ایک حصہ ہے. اور الہ ہوا، یعنی ہوا سے مراد اللہ ہے، الا اللہ، یعنی یہ لا الہ الا اللہ یہاں پہ کہا گیا ہے، سمجھ لیں. تو یہ دوسرا حصہ ہے. جو پہلا حصہ ہے وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا دوسرا حصہ ضروری ہے. بعض لوگ صرف الا اللہ الا اللہ الا اللہ اس کی گردان کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں بس یہی پڑھتے جاؤ اور اس سے آپ پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گی، اور آپ کی دھڑکن بن جائے الا اللہ الا اللہ. دیکھیں، جب تک لا الہ نہیں کہو گے، وہ پہلا حصہ ہے، تب تک الا اللہ پہ نہیں پہنچ سکتے. پہلے نفی کرو کہ کوئی نہیں ہے الہ سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے. یہ نہیں، یہ مکمل نہیں ہوتا. پہلے لا الہ کہو، پہلے کہو، انکار کرو، شعور کے ساتھ انکار کرو کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے. پھر آتا ہے یہ ایتھیسٹ لا الہ کہتا ہے، بس یہیں پہ رک جاتا ہے، وہ کہتا کوئی الہ ہے ہی نہیں، الا اللہ پہ نہیں آتا نا. اور بعض دفعہ ہم جب تبلیغ کرنے لگتے ہیں، دعوت کا جب میدان ہمارے لیے کھلتا ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگوں کو اس پہ لانا ضروری ہے کہ وہ رب مان لے اللہ تعالیٰ کو. نہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس اس نے رب مان لیا نا، یہ کون ہے مالک، کس نے کریٹ کیا، کس نے یہ آسمان بنایا، کس نے زمین. اچھا تم نے کہہ دی نا وہ ون گاڈ ہے، تو بس ہمارا کام ہو گیا، بس تو مسلمان ہو گئے. نہیں، جب تک وہ یہ نہیں مانتا لا الہ الا اللہ، الہ کوئی اور نہیں ہے سوائے اللہ کے، الہ پہ ہم نہیں لے کر آتے، ہم صرف رب کی بات جو ہے نا اس کے اوپر ایمفسائز کرتے ہیں اور اسی کے اوپر روک دیتے ہیں. اور مشرقین مکہ کا جو پرابلم تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ رب نہیں مانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں. اکثر ہم ڈیفائن کیسے کرتے ہیں، اگر ہم سے پوچھا جائے مشرقین مکہ کا عقیدہ کیا تھا، آپ کسی سے پوچھ کے دے دیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے. نہیں، ایسی تو بات نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے. جب قرآن کہتا ہے ان سے پوچھو کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، تو وہ کہیں گے اللہ نے. वो तो अल्लाह ताला को मानते थे और अल्लाह के नाम के साथ उसको मानते थे, अल्लाह कहते थे। आज तो पता नहीं कौन कौन से नाम रखे हुए, लेकिन वो तो बाकायदा अल्लाह कहते थे। फिर भी कुरान ने उनको मुशरिक कहा है, क्या वजह है? तो वो तो कहते थे कि आसमान और जमीन अल्लाह ने बनाए, वो इनका रब है। वो इस पे नहीं आते थे कि इलाह भी अल्लाह है। जब इबादत करने लगते थे, इबादत के अंदर सब चीजें आ जाती हैं, सजदा है, नमाज पढ़ना है, दुआएं करना है, झुकना है किसी के आगे, ये सब मनासिम में इबादत है, इबादत के रिचुअल्स हैं। हज है, उमरा है, तब इसके अंदर दूसरों को शरीक कर लेते थे। ऐसा नहीं है कि वो कहते थे अल्लाह नहीं है, वो कहते थे है, लेकिन तब वो शरीक बना लेते थे। ठीक है, इसलिए उनका अकीदा समझना जरूरी है कि हम ये जब सोच लेते हैं वो तो अल्लाह ताला के ऊपर ईमान नहीं रखते थे, उसको मानते नहीं थे। तो जब हम कहते हैं मानते नहीं थे, तो शायद हम सोचते हैं कि वो उनको अल्लाह का कोई पता ही नहीं था। नहीं, पता था, और यहाँ पे आके वो डंडी मारते थे। और तभी फिर आप ये देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ हम ऐसे काम करते हैं कि जिस वक्त हम कहते तो हैं मुंह से ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन फिर उसके बाद हम ये भी मानते हैं कि अल्लाह ताला ने कायनात को पैदा फरमाया, अल्लाह ताला इनकी तदबीर चलाता है, इनका खालिक है, मालिक है, लेकिन जब झुकना है तो फिर कब्र पे जाके झुकने शुरू हो गए, फिर चादरें वहां चढ़ाने शुरू हो गए, फिर दुआएं उससे करना शुरू हो गए। आप ही हैं हमारे दाता, आप ही हैं हमारे मौला, आप ही हैं, आपकी वजह से ये सारा शहर चल रहा है। एक जगह का सुना, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, उनने कहा ये जो शहर सारा चल रहा है ना, अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह इस शिरकिया बात से अल्लाह ताला मेरी पकड़ ना करे, कि ये जो सारा शहर चल रहा है ये दाता साहब की करामत की वजह से चल रहा है, और ये जो शहर पूरा कराची बसा हुआ है ना, ये इन जो वहां के, जिनका नाम भूल गया, कि उनकी मिजार है ना, उन्होंने तूफानों को रोका हुआ है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं चढ़ रहे। तो और शिर्क क्या होता है फिर? तो जब इलाह मानना है तो वहां पर ही तो प्रॉब्लम आता है लोगों को। तो ला इलाह इल्ला हुआ यहयी व युमीत, वो जिंदा करता है और वो मौत देता है, जिंदगी और मौत उसके हाथ में है। तब नमरूद ने कहा था तो मैं भी जिंदा और मुर्दा मौत देता हूं। उस बेवकूफ को ये नहीं समझ आई कि पैदा करना और मौत देना वो किसी और सेंस में है। उसने एक कैदी को बुलाया, उसको मौत की सजा हुई थी, उसको छोड़ दिया, एक जाते हुए राहगीर को पकड़ के तो उसको मौत दे दी, लो जी मैं भी मौत और जिंदगी दे। बताओ उस वक्त जिंदगी कौन दे सकता है जब कोई बिस्तरे मर्ग पे पड़ा हो, उसके प्यारे खड़े में, माँ कह रही है कि मेरी जान इसके अंदर चली जाए और मेरी औलाद बच जाए, मेरा बच्चा बच जाए। बाप कह रहा है मैं दौलत लुटा दूं, अपनी एक एक रुआ में इस पे कुर्बान कर दूं, मेरे बच्चे को जिंदगी मिल जाए। नहीं मिलती। वो जो मरने वाला है वो कहता है कि मैं जितना कुछ है मेरे से ले लो, मुझे चार सांसें और दे दो। नहीं हो पाते। तब पता नहीं चलता कि मौत किसके हाथ में, नहीं पता चलता, नहीं समझ आती। अल्लाह अकबर। और जिंदगी देना, बार दफा कुछ औरतें होती हैं, वो चाहती हैं कि ये बच्चा गिरा दें, हम हमारे पेट का बच्चा हम गिरा दें और ये ना दुनिया में आए। अल्लाह ताला की मर्जी है, वो जिंदा रह, जिंदा दुनिया में पैदा हो जाता है। कोई किसी को मारना चाहता है, उसको इतना कोशिश करता है, वो नहीं मरता। लोग छलांग लगा देते हैं ऊपर से, फिर भी बच जाते हैं। इससे कि जिंदगी देने वाला अल्लाह है। रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन। जी हाँ, जजाकल्लाह खैर। अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार जो है, उन्होंने कहा ये है जो कराची शहर को बचाए हुए, ये शिर्क है। तो वो रब तुम्हारा भी है, तुम्हारे आबाओ अजदाद का भी रब वही है। यानी रब तौहीद रबूबियत से अल्लाह ताला ने दलील दी तौहीद अलूहियत की। ये मैं पहले भी बहुत दफा बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि रब होना, इस चीज को लोग मान लेते हैं, तौहीद अलूहियत को नहीं मानते, कि अलूहियत में इला मानने में भी तौहीद होनी चाहिए। रबूबियत में तो तौहीद है, रब मानने में तो तौहीद होती है, इलाह मानने में तौहीद नहीं रहती लोगों की। ये प्रॉब्लम था मुशरिकी ने मक्का का, और आज के मुशरिक तो इससे भी गए गुजरे हो गए, वो तो तौहीद रबूबियत पे भी नहीं आते। उनका जब उन्होंने कह दिया कि ला इलाह कोई है ही नहीं इला। और उन्होंने ये भी ना माना कि एक मैं डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, मुझे हंसी भी आ रही थी उसको देख के, कि उन्होंने सारा मतलब बिलियंस ऑफ ईयर से बताया कि ये कैसे क्रिएट हुई अर्थ और किस तरह से ये सारा कुछ हुआ। तो उन्होंने कहा पहले ऐसे हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर उसके बाद कैसे इसके ऊपर लाइफ शुरू हुई। तो मतलब हंसी भी आती थी कि तुम इतनी बातें बिलियंस ऑफ ईयर्स की कर रहे हो, बताओ जरा कि किस सारा कुछ इत्तेफाक से हो गया सब कुछ, और फिर ऐसे हो गया, फिर ये हो गया, फिर वो सब कोई खुद ही होता जा रहा था, फिर बंदर बना, फिर बंदर से इंसान बन गया, वो भी सारा खुद, वो आज क्यों नहीं बंदर से इंसान बन रहे, और सारी चीजें खुद ब खुद ही होती चली गई। इंसान की अक्ल मजबूर है ये मानने पे कि कोई है जो बिलियंस, उन्होंने सुभान अल्लाह मतलब इट वॉज अमेजिंग, उन्होंने आई डोंट रिमेम्बर कि 465 बिलियन ईयर्स पहले से स्टार्ट किया कि उस वक्त क्या था इस कायनात में, और उसके बाद अर्थ कैसे फॉर्म हुई, फिर उसके बाद उसके ऊपर चीजें कैसे फॉर्म हुई, तो बड़ी दिलचस्प थी। मगर सारी चीजों में जुबान से एक ही बात निकलती थी, सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह, तो सुबहान अल्लाह, या अल्लाह तेरी कायनात कब से चल रही है, और ये इत्तेफाक नहीं है, इन्ना फी खल्क समावाती वल अर्दी वख्तिलाफ लैली वन नहार इला आयात लिउलिल अलबाब। वाकई फिर इसमें ये कायनात के चलने में, ये दिन और रात के निजाम में वाकई निशानियां अकल वालों के लिए, कि उनसे वो अल्लाह को पहचान लेते हैं। जितना आप इसके अंदर डेप्थ में जाते हैं, आपको लगता है या रब तू है करने वाला, कोई और नहीं ये कर सकता, सुभान अल्लाह, तेरी जात पा के या रब, तुम बिलियंस ऑफ ईयर्स की बात कर रहे हो और उसके बाद तुम एक एक डिटेल बता रहे हो, फिर अर्थ में ये इर्तिका आया, ये चेंजेस आई, ऐसे हुआ, ऐसे सब ऐसे ही हो गया, या कोई था करने वाला, सब ही इत्तेफाक था। कितने इत्तेफाक होंगे आखिर, एक हो गया, चलो तुम्हारी बात मान ली जाए तो एक हो गया, दो हो गए, मगर शुरू से आखिर तक इत्तेफाकात ही होते रहे, ये कौन मानेगा, कोई बेवकूफ ही होगा जो मानेगा। एक हांडी हम पकाने लगे तो हम कहते हैं, कोई कह दे आपको कि उसके बाद इतना नमक खुद ब खुद गिर गया अंदर, फिर वो मिर्चें ऊपर से आई और फिर वो खुद ब खुद इतनी एक चम्मच ही गिरी, फिर उसके बाद गरम मसाला है वो भी उतना ही गिरा, फिर सब्जी कट के खुद ही अंदर चली गई, फिर उसके बाद वो बनना भी, ये तो ऐसे ही कहने वाली बात है, इसको तो कोई कहता नहीं, एक एक इंग्रेडिएंट उसका मेजर्ड बिल्कुल सही तादाद के अंदर उसके अंदर गया, इसको तो कोई नहीं कहता आज, और कोई कह दे तो उसके ऊपर लोग हंसेंगे, पागल है, इतनी सी हांडी तो ऐसे पक नहीं सकती, ये पूरी जमीन कायम हो गई और इसमें लाइफ भी शुरू हो गई इत्तेफाक से ही, और उसके बाद सब चीजें भी यहाँ पे बन गई इत्तेफाक से ही, बल्कि जमीन भी बनी इत्तेफाक से ही, बिग बैंग हुआ और जमीन भी बन गई, अल्लाह अकबर। तो इंसान क्या करे, उसको तो ये इसी को फितरत कहते हैं, कि फितरत फिर बोलती है कि एक खुदा है और लाजमी है कोई, ये साइंस को भी यहाँ पे झुकना पड़ता है, ये लोग जो आज साइंस को खुदा बनाए होते हैं ना, प्रूव करें जी साइंस से, पहले साइंस प्रूव करेगी खुदा का वजूद तो फिर हम मानेंगे। साइंस तो कहती है जो चीज देखो, जो चीज सुने, जो चीज प्रूव हो, वो ही है बस, और उसके अलावा कोई चीज को हम मानते ही नहीं। तुम कैसे फिर अल्लाह ताला का वजूद प्रूव करोगे, उसकी निशानियों से प्रूव करेंगे, अल्लाह को देखने से नहीं, उसकी निशानियां प्रूफ है इस बात का, एक है जात जो करने वाली है, जो इससे बाहर है, वो इसके अंदर भी नहीं है, वरना अंदर होती तो इस सारी चेंजेस के अंदर वो भी कहीं बन रही होती, वो इससे बाहर है जो सब कुछ चला रहा है, वही तो है जो निजामे हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। बल हुम फी शक यलाबून, लेकिन तो ये शक में ही पड़े हुए, इनको समझ ही नहीं आती, और खेल कूद में है, गफलतों में है, खेल जो है ना वो गफलत की निशानी है, इंसान जो खेल कूद करता है वो गफलत है, उतनी देर वो गफलत में ही होता है। तो इनका हाल लोगों का क्या है, कि वो शक में ही है, कौन इला है, जो शिर्क भी कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह किसको माने, कभी उसको मान लेते हैं अल्लाह, कभी उसको मान ले, कभी उधर जाके सजदे कर रहे हैं, कभी उधर जाके सजदे कर रहे हैं। जो ये इस तरह का शिर्क करते हैं कि कब्रों को पूछते हैं, वो भी कोई एक के साथ थोड़ी है, जिधर चले जाओ तो बल्कि लिस्ट बना लेते हैं। जो किसी ने बताया वो लिस्ट बनाते हैं कि आप इस शहर में जा रहे हैं ना, वहां पे कौन कौन से मिजार हैं, आपने उनकी हाजिरी दी कि नहीं। तो अगर तुम ही इनको ही समझते हो कि यहीं से मेरी मुरादें पूरी होनी है, तो फिर भाई एक के साथ ही जुड़े रहते। तुम्हें तो ये भी यकीन नहीं है, कभी किधर माथा टेक रहे हो, कभी किधर माथा टेक रहे हो। फरतकब, तो इंतजार करो फिर, किस दिन का, यौम तस्माउ दुखान मुबीन, फिर इंतजार करो उस दिन का जिस दिन क्या होगा, एक खुला धुआं आएगा। ये तो आज अपने शुगल मेलों में मशगूल है ना, कुछ फिक्र नहीं कर रहे और शिर्क के साथ ही राजी हैं। तो फिर उस दिन का इंतजार करें जब ये आपकी बातें नहीं सुन रहे ना, है नबी। और फिर वो दिन आ गया था। जी हाँ, इसकी दो तफसीरें की जाती हैं, धुआं से मतलब क्या है। एक तो ये कहा जाता है कि एक धुआं टाइप जो चीज आई थी, वो ये कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में थे, उस वक्त मक्का में बहुत बड़ा कहत आ गया था, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ से आया था। आपने बद्दुआ की थी कि या अल्लाह, जिस तरह यूसुफ अलैहि सलाम के जमाने में तूने कहत भेजा था, इसी तरह इनके ऊपर कहत भेज दे। तो अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल की थी, और इतनी खुशखुशाली हो गई थी, ये हड्डियां और मुर्दार खाना शुरू हो गए थे, और भूख का आलम ये था कि आसमान की तरफ देखते थे, धुआं धुआं नजर आता था, बस कुछ और नहीं नजर आता। यानी भूख की वजह से आंखों में, जैसे अल्लाह ताला रहम फरमाए, अल्लाह ताला ऐसी भूख से भी महफूज रखे, लेकिन इतने उनको चक्कर आते थे ना, ऐसे लगता था कि ऊपर कुछ नहीं है, बस धुआं धुआं ही है। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। फिर ये लोग आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और इन्होंने इल्तजा की थी कि आप हमारे लिए दुआ करें। ने कहा हम तो हलाक हो जाएंगे, हम आपके रिश्तेदार ही हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अल्लाह ताला से दुआ की, तो ये हट गया था। तो एक तो ये कहा जाता है कि इसका मतलब ये है। तो ये कहा गया कि देखो, तो फिर इंतजार करें कि उस दिन फिर क्या हाल होगा, जब इनके ऊपर धुआं आ जाएगा खुला। तो वो फिर आ गया था ना इन कुरैश के ऊपर। दूसरी बात कि ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। सहाबा कयामत का जिक्र कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, तो आपने फरमाया जब तक 10 निशानियां पूरी नहीं होती, तुम कयामत नहीं देखोगे। नंबर वन, सूरज का मगरिब से निकलना। नंबर टू, धुआं, याजूज माजूज, ईसा अलैहि सलाम का आना, दज्जाल का आना, मशरिक मगरिब और जजीरा अरब में जमीन का धंस जाना। तो ये 3 निशानियां, मशरिक में जमीन धंसेगी, सिंक होल जिसको कहते हैं या क्या, मगरिब में और जजीरा अरब में, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, यानी जब जमीन में धंसना होगा ना, तो लोगों समेत, चीजों समेत लोगों को अंदर ले जाएगी जमीन, स्वालो कर लेगी उनको। कितनी खौफनाक बात है ये। पॉट होल कभी कभी कहा, एक दफा मैंने न्यूज में सुना कि एक जगह पर उन्होंने कहा कि अल्लाह माफ कर दे, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अल्लाह ताला की पकड़ से इंसान हर बार डरता रहे। एक लड़का सोया हुआ था, तो उसके कमरे में पॉट होल हुआ, इस तरह हुआ, बेड समेत वो जमीन के अंदर चला गया। तो सोचें, जब वो बड़ा कोई आएगा मशरिक में, ईस्ट वेस्ट और जजीरा अरब में, और आग का आदन से निकल के लोगों को हाँ के एक तरफ ले जाना, जहां ये रात गुजारेंगे और आग भी गुजारेगी, और जब दोपहर को सोएंगे तो आग भी कैलूला करेगी, मुस्लिम की रिवायत। और एक और हदीस में धुएं के, चुका अभी हम धुएं की बात करें दुकान की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे रब ने तुम्हें 3 चीजों से डराया, धुआं जो मोमिन को जुकाम की तरह लगेगा बस, इतना मतलब उसके लिए इतना स्वेयर नहीं होगा, और काफिर के तो सारा जिस्म फुला देगा, रुए रुए से धुआं उठेगा, और दाब्बतुल अर्द और दज्जाल, ये 3 चीजें हैं जो तुम्हारा रब तुम्हें इनसे डराता है। यानी कितनी स्वेयर होंगी, हम तो एक कोविड को ही लेके परेशान रहे कि हाई कोविड आ गया, तो पता नहीं कितनी मुसीबत हमारे ऊपर आ गई, पूरी दुनिया ही रुक के रह गई। सोचें अब ये धुआं कैसा होगा जो सारी दुनिया के ऊपर छाएगा, और दाब्बतुल अर्द और दज्जाल, इनसे अल्लाह ताला डराता है तुम्हें। दज्जाल भी खौफनाक चीज ही है।
और दूसरी हदीस में भी यही इसी तरह आता है कि धुआं फैल जाएगा, मोमिन को तो जुकाम की तरह होगा, कॉमन कोल्ड जैसे होता है, लेकिन काफिर के जोड़ जोड़ से निकलेगा, इतना स्वेयर होगा उसके लिए। अस्तगफिरुल्लाह, तो ये धुआं हर तरफ छा जाएगा, कोई जगह ऐसी नहीं होगी जो इससे बाकी रह जाए। अब कहने में इंसान सोचता है धुआं ही होगा ना तो क्या हो, नहीं आप देखें धुआं जब हो जाता है, आप देखते हैं ना जब वो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, जब आग कहीं लगती है और उसका धुआं होता है, तो कैसे इंसान चोक करने लगता है, कैसे इंसान को ऐसे लगता है कि ये मेरी सांस बंद हो जाएगी, तो वो कितना खौफनाक होगा, तो काफिर के लिए बहुत ज्यादा खौफनाक होगा। तो ये दो चीजें हैं जो दुकान से मुराद ली गई हैं। तो एक चीज गुजर चुकी है जो मुशरिकीन मक्का पे आया, और दूसरी चीज ये जो आएगी जो कयामत की एक निशानी होगी, तो उनको उससे भी डराया जा रहा है, और फिर रहती दुनिया तक लोगों को इससे डराया गया कि अपने आप को फिक्स कर लो, अगर नहीं फिक्स करते तो फिर इंतजार करो कयामत की इस निशानी का कि जो आ जाएगी जब, तो यफशन्नास ढांप लेगी लोगों को, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, कि छा जाएगा ये इंसानों के ऊपर, यानी हर एक को पहुंचेगा, सबको कवर कर देगा, गशी जो होती है जैसे गशी भी छा जाती है ना, तो ये ढांप लेगा धुआं, और वो क्या कहेंगे लोग उस वक्त, हादा अजाबुन अलीम, तो लोग कहेंगे ये बड़ा दर्दनाक अजाब है, ये तो बड़ा मुश्किल वक्त है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, आपने एक ही अल्लाह ताला ने जरा सा वो कोविड भेजा तो ऐसे लगता था कि दुनिया खत्म होके रह गई है, कुछ बाकी नहीं रहा, लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए, कितनी जहनी बीमारियों के शिकार हो गए, क्राइम में ज्यादा इजाफा हो गया, क्या कुछ नहीं हुआ, दुनिया ही बदल गई, एक एक बीमारी, एक सिर्फ वायरस था, और अल्लाह अकबर जब ये सारी दुनिया को लपेटेगा, तो अब हमारे लिए ये अंडरस्टैंड करना कोई मुश्किल नहीं है, जब हमने कोविड को देख लिया ना कैसे वो पूरी दुनिया पे ही फैल गया, कोई मुल्क ही नहीं बचा, इसी तरह अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल है, धुआं सारी दुनिया को लपेट में ले ले, पता नहीं शायद कोई बाहर से ही आए धुआं, वल्लाहु आलम कैसे आएगा वो, लेकिन ये कयामत की एक निशानी है। अल्लाह ताला हम सबको इसे सबक लेने की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم